श्लोक जहां पर सीधे सीधे भगवान जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित और अपने जीवन को जिसने ब्रह्मार्पणम या भगवान को अर्पित कर दिया है, उस व्यक्ति के जीवन के लक्षण क्या है और उस व्यक्ति के इस जीवन के पश्चात का गंतव्य स्थान क्या होता है, तो आज इसका हम भाग चौथा लेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवी भी आध्यात्मिक होता है। तो जैसे हमने कहा कि इन श्लोकों में और खास तौर पर ये 24वें श्लोक में भगवान कैसे कोई पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति अपने जीवन को और उसका जीवन या हर किसी व्यक्ति का जो जीवन है वो कर्मों से बना गया है। कर्मों के द्वारा जो कुछ ये हमारा शरीर, ये स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर, इस ये पूरे जो भी हमने मनुष्य समाज में रचना की है, ये हमारे कर्मों के वजह से। तो इसलिए यहां पर भगवान खास तौर पर भगवद गीता में और इन श्लोकों के द्वारा कर्मों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने कर्मों को यज्ञ बना लिया, यज्ञ का अर्थात है कि जो भगवान अधियज्ञ हैं, 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान को अधियज्ञ बोल रहे हैं, क्योंकि इतना 3रे अध्याय में और ये 4थे अध्याय में ये यज्ञ का उदाहरण सुनने के पश्चात 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान को अधियज्ञ कहते हैं कि ये सारे यज्ञों के अधिष्ठात्रा देव या यज्ञेश्वर। तो यदि उनको सब कुछ समर्पित करना है, जिसको इस श्लोक में ब्रह्मार्पणम कहा गया है, जब जीव ब्रह्म परब्रह्म को ब्रह्म की विधि से अपना सर्वस्व अर्पित करता है, उस क्रिया को ब्रह्मार्पणम कहते हैं। तो हमने उदाहरण लिया था कि जैसे जब लोहा अग्नि के संपर्क में आता है तो वो लोहा भी अग्नि का कार्य करता है, उसी प्रकार से जब एक पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, वो अपने जीवन के हरेक कार्य को भगवान को समर्पित कर देता है और उन्हें उद्देश्य मानते हुए जब कार्य करता है, तो जो कुछ वो इस्तेमाल कर रहा है, हर एक वस्तु, हर एक स्थान, हर एक व्यक्ति, स्थिति, सब कुछ यहां पर क्या बताया गया है, ब्रह्म या दिव्य चेतन हो जाता है। तो खास तौर पर अब यदि हम यज्ञ की बात कर रहे हैं तो यज्ञ की अग्नि, उसकी तो चर्चा करनी ही होगी। जिस अग्नि में हवन सामग्री डाली जाती है वह भी भगवान उसे ब्रह्म कह रहे हैं। तो हमने हमारे पिछले सेटिंग में यह श्लोक लिया था 15वें अध्याय का, जहां पर इतने प्रैक्टिकल तरीके से भगवान समझा रहे हैं कि जो अग्नि कि आवश्यकता हमें बाह्य रूप से है और आंतरिक रूप से है। बाह्य रूप से सूर्य की रोशनी जिसके वजह से पूरा जीवन है, और यहां तक कि चंद्र की रोशनी जो कि सूर्य की ही रोशनी है वो भी हम सब के जीवन यापन के लिए कितना आवश्यक है। तो सूर्य की रोशनी, चंद्र की रोशनी जिसके वजह से हमें अनाज, तरकारियां, फल इत्यादि ये सब कुछ उपलब्ध करा कर दिया जाता है। अब इन सब को पकाने के लिए, उगाने के लिए अग्नि की आवश्यकता है, जैसे कि सूर्य की अग्नि। इन सब को पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता है, परंतु यहां पर भगवान बता रहे हैं कि वो सब कुछ हो भी जाए उसे पचाने के लिए भी अग्नि की आवश्यकता है। तो भगवान कहां से कहां तक, उनका स्पेक्ट्रम देखो कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इन विशेष तरीकों से भगवान हमारे हरेक जीवन के पहलू में मौजूद है। तो यदि हम एक स्लाइड में ये सारे मुद्दे देखें तो ब्रह्म कर्म, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि एवं ब्रह्म अग्नौ, और ये सारे जो साधन हैं ये ब्रह्मानुकरण की विधि बताई गई है। तो फिर अगला प्रश्न ये है कि यदि वो जीव, और वो जीव जो कुछ इस्तेमाल करता है सब कुछ ब्रह्म का कहलाया गया है यहां पर, तो फिर जीव में और परब्रह्म में क्या अंतर है। हमने उदाहरण लिया था कि जो बेटा है किसी पिता का वो आगे चलकर पिता बन सकता है, परंतु अपने पिता का पिता नहीं, कभी नहीं बन सकता। तो उसी प्रकार से हम ब्रह्म हैं परंतु हम परब्रह्म कभी नहीं बन सकते। तो ये कुछ उदाहरण हमने शास्त्रों से लिए थे कि अग्नि एवं चिंगारी, सोने की अंगूठी एवं सोने की खान, समंदर एवं समुंदर की एक बूंद। अब देखिए यहां इन सब उदाहरणों के द्वारा क्या समझ में आ रहा है कि हम में और भगवान में समानताएं हैं, और समानता यदि नहीं होगी, जैसे कि उदाहरण हमने पिता का और पुत्र का दिया, तो यदि पिता और पुत्र में समानता नहीं होगी, आजकल तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रूव किया जा सकता है क्या समानता है, डीएनए है ना, उनका डीएनए एक है, और बाह्य रूप से भी आप देखो तो शक्ल मिलती जुलती होती है, उनके जो हाव भाव हैं वो मिलते जुलते होते हैं। ये तो सब बाह्य दृष्टिकोण से हो गया, परंतु आंतरिक दृष्टिकोण से संस्कार, कि माता पिता जो संस्कार, जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं, वो केवल गर्भ धारण नहीं करती मां, बल्कि उससे ज्यादा उनके चेतना के जो संस्कार हैं वो सब उसमें प्रवेश करते हैं, और उसके द्वारा उस शिशु का निर्माण होता है, उन संस्कारों के द्वारा उसका निर्माण होता है। और आगे चलकर अगर इसे हम परंपरा कहें तो आगे चलकर उन्हीं संस्कारों को वो शिशु जब बड़ा होता है तो वो उस वंश में उसे आगे बढ़ाता है। तो ये सब हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप देखो आपके भी पूरे वंश में एक कनेक्टिंग लाइन होगी, जिसको कहेंगे कनेक्टिंग थ्रेड। अब आप कहोगे कि ठीक है भाषा या फिर आपका जो सरनेम है वो, ये तो सब बाह्य चीजें हैं, लेकिन खास तौर पर वो जो संस्कार हैं, वो जो वृत्तियां हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसे कहेंगे गुण। इसलिए यहां पर गुणात्मक दृष्टिकोण से हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं, परंतु मात्रात्मक दृष्टिकोण से हम में और भगवान में जमीन आसमान का अंतर है। तो श्रील प्रभुपाद एक सरल सा उदाहरण दिया करते थे, हम भी भारतीय नागरिक हैं और नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी भारतीय नागरिक हैं, दोनों भारतीय हैं, समानताएं हैं। वो भी कहते हैं मैं भारत का रहने वाला हूं, हम भी बोलते हैं हम भी भारत के रहने वाले, परंतु मात्रा के दृष्टिकोण से एक साधारण नागरिक और देश के प्रधानमंत्री में जमीन आसमान का अंतर है। उनकी शक्तियों में, उनके प्रभावों में, इन सब में जमीन आसमान का अंतर है। अब बहुत बार कई जो भगवद गीता के टीकाकार हैं, जो थोड़ा अर्थवाद कर देते हैं भगवद गीता के ऊपर, तो वो खास तौर पर ये जो श्लोक है 24वां श्लोक, जिसके अंदर ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि ब्रह्म में स्थित जीव ब्रह्म वो लीन हो जाता है, तो ये शब्दों को लेकर वो अर्थ का वाद करते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति, ये सारे जो उनके शब्द हैं उनको बहुत प्रिय होते हैं, जैसे कि परम ज्योत, निर्विशेष। तो ये व्यक्ति किसी को प्रचार करने जा रहा था और उसने उस व्यक्ति को जलती हुई ज्योत दिखाई, तो जलती हुई ज्योत दिखाकर इसने पूछा तो ये ज्योत कहां से आई बताओ, इस ज्योत का स्रोत कौन है। तो ये साधारण सा व्यक्ति था, किसान जो अपना खेती करता था उस प्रकार का व्यक्ति था, तो उसे अब इतना टेक्निकल क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि ज्योत कहां से आई। उसको तो सामने दिख रहा था बाती में से जल रही है ज्योत, और कहां से आई। लेकिन वो और गहराई में पूछने की कोशिश कर रहे थे, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, फूंक मारकर उसे बुझा दी, उस ज्योत को बुझा दी, और फिर पूछा अब बताओ महात्मा जी ज्योत गई कहां। आपका प्रश्न था ज्योत आई कहां से, मैं आपको प्रश्न पूछता हूं कि ज्योत गई कहां। महात्मा जी और कंफ्यूज, क्या आंसर दें। तो इसने कहा जहां से ज्योत आई थी वहीं चली गई। तो जो तार्किक होते हैं, जो केवल तर्क का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही एक लड़का, उसने बहुत पोथियां पढ़ ली और बहुत पोथियां पढ़कर वो हर समय हर चीज को तर्क के आधार पर प्रस्तुत करता था। तो उसकी मां ने एक बार उसके पसंदीदा मोतीचूर के लड्डू बनाए थे, उसको अच्छे लगते थे, उसके लिए मोतीचूर के लड्डू बनाए। तो अब उस मोतीचूर के लड्डू जब उसके सामने एक छोटे से प्लेट में दो लड्डू रखे गए, तो उसने अपने मां को बुलाया, बताओ मां ये कितने लड्डू हैं। तो उसने कहा अरे तुम इतनी पोथियां पढ़ लिए, तुम्हें दिखता नहीं दो लड्डू हैं। नहीं नहीं गिनती करो, गिनती करके बताओ कितने लड्डू हैं। तो वो थोड़ा इरिटेट हो रही थी, और भी घर के काम है, पता नहीं इसको क्या सूझी हुई है। ठीक है ये एक लड्डू, ये दो लड्डू। उसने कहा एक और दो कितने हुए, तीन हुए। उसने जो सवाल पूछा था उसका जवाब उसकी मां ने क्या दिया, ये एक लड्डू ये दो लड्डू, एक और दो तीन लड्डू हुए। तो पिताजी ये सब कुछ देख रहे थे और सुन रहे थे, तो पिताजी ने कहा अच्छा बेटे तीन लड्डू है ना, तो पिताजी ने एक लड्डू खा लिया, दूसरा लड्डू मां को दे दिया, क्या तीसरा तू खा ले। तो इसलिए यहां पर जब भगवान इस प्रकार के श्लोक कह रहे हैं तो इन श्लोकों को हमें भगवान जिस चेतना में, जिस भावना में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस भाव में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद जैसे कृष्ण भावनामृत टीकाकार जब इन श्लोकों पर टीका लिखते हैं तो वो सही रूप में बताते हैं कि भगवान में और हम में एकात्मता किस प्रकार की होनी चाहिए और कैसे है, और उसके साथ साथ हम में या जीव ब्रह्म में और परब्रह्म में विभिन्नता, जो कि चैतन्य महाप्रभु इस सिद्धांत को लेकर आए, अचिंत्य भेद आभेद तत्व। तो ब्रह्म हवि का एक और अर्थ हमारे वैष्णव टीकाकार कहते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की कथा लीला श्रवण करते हैं तो लीला श्रवण करना वो भी यज्ञ के समान है। जैसे यज्ञ में यज्ञ का कुंड होता है, वैसे श्रवण में इसे यज्ञ का कुंड बताया गया है। ये जो हमारे कान हैं ये यज्ञ के कुंड बताए गए हैं, और भगवान श्री कृष्ण की कथा इस यज्ञ कुंड में प्रवेश करने वाली आहुति है। तो जब आहुति मंत्रोच्चारण द्वारा शुद्ध भाव से यज्ञ कुंड में या यज्ञ अग्नि में अर्पित की जाती है तो वहां पर वो वस्तु शुद्ध होती है और जो व्यक्ति उसे अर्पित कर रहा है वो शुद्ध हो रहा है, और उसके पश्चात उस यज्ञ का जो प्रसाद है वो जो ग्रहण करता है वो शुद्ध होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कृष्ण कथा सुना रहे थे, श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, तो मेन फोकस वो कथा का सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज थे, लेकिन अनगिनत ऋषि मुनि वहां पर आकर बैठ गए थे। उन्हें जब पता चला कि सुखदेव यहां पर भागवत कथा होने वाली है तो कितने सारे आकर बैठे। अब देखो कि एक दृष्टिकोण से यह सिचुएशन थोड़ी अजीब नहीं लगती आपको? मान लो कि आप किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत कुछ गहन मुद्दे के ऊपर वार्तालाप आपका चल रहा है उस व्यक्ति के साथ, और उस व्यक्ति के बगल में बहुत से और लोग आके बैठ जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अरे मैं इससे कुछ बात कर रहा हूं, ये इतने सारे लोग आके बैठ गए। तो यहां सुखदेव गोस्वामी का फोकस ऐसा बना रहा कि परीक्षित महाराज को जो आवश्यक है, उनको जो श्राप मिला है 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो जो उनके लिए अति आवश्यक है वो मुझे प्रस्तुत करना है, चाहे कोई भी आगे वहां पर आके बैठे। लेकिन उदाहरण ये दिया गया है कि बाकी जो बैठे हुए थे उन सबको भी लाभ हुआ उतना ही जितना परीक्षित महाराज को लाभ हुआ। तो इसके संदर्भ में मैं उदाहरण देता हूं कि जब पुजारी आरती के जो महाजल है, भगवान को अर्घ्य अर्पित किया जाता है, महाजल अर्पित किया जाता है शंख में, उसके पश्चात जो वो अर्पित महाप्रसाद जल है उसको जब पुजारी सबके ऊपर वो छिड़काता है, तो हो सकता है कि यदि कोई साधु संन्यासी आए हुए हैं तो उनके ऊपर पहले छिड़काएगा, लेकिन बगल में जो भी खड़े हैं उनके ऊपर भी छींटे लगते हैं, है ना? उनको पता भी नहीं होगा कि ये अचानक गीला गीला क्या लग रहा है, पानी कहां से आया है। नए लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता, कई बार नींद आ रही होती है आरती में, तो उनको लगता है शायद नींद से उठाने के लिए डाला गया है। तो वो पुजारी अगर किसी एक भक्त के ऊपर फोकस कर वो महाजल फेंक रहा है, छिड़का रहा है, परंतु बगल में जितने हैं उन सबको भी उसका लाभ होता है। तो यहां पर ये जो हमने उदाहरण दिया कि दो कानों को जोड़ दिया जाए तो साइन कौन सा साइन बन रहा है? हार्ट का साइन बन रहा है। और अंग्रेजी का ये जो शब्द है हार्ट, इसके बीच में भी ईयर ये शब्द आता है। तो पिछले बार हमने नीति शास्त्र के आधार पर ये चार प्रकार के जो प्राणी हैं इनको लिया था कि श्रवण के ये चार प्रकार। तो गधे के भांति मतलब कुछ समझ में नहीं आता, वो सबसे निचला स्तर है। उसके पश्चात कौवे के भांति जो हर समय खोट ढूंढता रहता है कि चाहे आप कितनी भी शुद्ध कृष्ण कथा सुनाओ, कितने भी कन्विंसिंग तर्क शास्त्र के आधार पर अर्पित करो। ऐसे ही एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आया और श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप उसके अंदर खोट निकालने के लिए कह रहा है, इस श्लोक में कहां भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया, लेकिन आपके तात्पर्य में आपने डायरेक्टली कृष्ण के बारे में बताया। प्रभुपाद बैठे सुन रहे थे, फॉल्ट्स निकाल रहा था। तो प्रभुपाद बोले, और कहां पर? उसने कहा, और बताऊं, ये श्लोक ये चौथे अध्याय में, ये छठे अध्याय में, ये आठवें अध्याय में। प्रभुपाद पूछे जा रहे हैं, और कहा, और कहा? और बाकी सारे जो शिष्य बैठे हुए थे वो इरिटेट हो रहे थे कि प्रभुपाद वो अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, या इसको चुप क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद उल्टा उसको उकसा रहे हैं, अच्छा और कहा है, और कहा है, और कहा तुम्हें गलती दिखाई दी, और गलती पे गलती, गलती पे गलती। लेकिन उसके चलते, वो गलती निकालने के चलते बाद में प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा, कितनी दफा उसने कृष्ण का नाम उच्चारण किया। और प्रभुपाद वही चाहते थे कि इस व्यक्ति के उद्धार के लिए यदि कुछ संभावना है तो वो है हरिनाम, क्योंकि ये कौवे के भांति केवल जहां पर गंदगी है गंदगी ढूंढने की कोशिश कर। तो जब हम श्रवण की बात कर रहे हैं तो हमने पिछले दफा ये पांच प्रकार के श्रवण हम सब अनुभव करते होंगे, इस समय भी कर रहे होंगे, कि जो हमें बात पल्ले नहीं पड़ती हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते कि भाई पता नहीं ये कौन सी भाषा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि नहीं समझ में आया, इग्नोर कर देते, फोन निकाल लेते हैं, फोन में जो कुछ समझ में आया वो देखते रहते हैं, या अगर वो बुरा लगेगा तो फिर चलो मन में ही कुछ और सोचना शुरू कर देते। फिर हमने ये लिया था कि प्रिटेंडिंग, चलो कम से कम स्पीकर के गुड बुक्स में रहेंगे कि नाटक करते हैं, ध्यान से सुन रहा हूं, टकटकी लगा के स्पीकर की ओर देखते रहते हैं, कई बार गर्दन भी हिलाते रहते हैं, स्पीकर कुछ बोला वाह क्या पॉइंट। सिलेक्टिव, ये जो सिलेक्टिव लिसनिंग है अधिकांश कलयुग में जो श्रोता हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं सिलेक्टिव। और ये कौन सी कैटेगरी है कि क्योंकि हम आए हैं कुछ सुनने के लिए तो हम कुछ अपेक्षा तो रखे हैं ना, इतना समय निकाल के इतनी दूर आए हैं तो कुछ अपेक्षा तो रखे हैं, लेकिन फिर उस कथा में या उस प्रवचन में अगर कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे हमने कहा कि जिससे हम सहमत नहीं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? पल्ले ही नहीं पड़ रहा, फर्स्ट टू कैटेगरीज। लेकिन ये थर्ड कैटेगरी में समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन सहमत नहीं है। यदि हमने प्रवचन में कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है, सारे देवताओं के, सारे ईश्वरों के वो परमेश्वर हैं, तो मन ही मन कई बार हम उसको डिसएग्री कर रहे हैं। मैं नहीं मानता, तुम बोलो जो भी बोलना, मैं नहीं मानता। तो फिर होता क्या है, तो हम बोलते नहीं है, लेकिन फिर उसी लेक्चर में या उसी प्रवचन में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिससे हम सहमत हो जाएं कि यदि ये जो प्रवक्ता है, यदि मान लो कह दे कि हरे कृष्ण महामंत्र ये बिना नहाए भी कोई जप कर सकता है, हाँ ये बात सही है, कोई इसमें नियम लगाए नहीं गए हैं कि आपको उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के उसके पश्चात नहीं। यदि किसी के पास वो सुविधा नहीं है तो भगवान का नाम इतना शुद्ध है, तो अभी देखो इसको क्या बोलते हैं, तुरंत उस समय हमारे कान, हाँ ये बात स्पीकर ने सही कही। फिर वापस दूसरा कोई पॉइंट आ जाएगा, लेकिन इस हरे कृष्ण महामंत्र को और शुद्ध तरीके से करना है तो चार नियम पालन करने हैं, मांसाहार नहीं करना, फिर प्याज लहसुन नहीं खाना, उसमें चाय कॉफी नहीं, ये सब कुछ नहीं। मन ही मन फिर हम लोग कहते हैं, मतलब अभी अभी तो बोल रहे थे कि बिना नहाए धोए भी कर सकते हैं, अभी ये चार नियम की क्या जरूरत थी, हाँ अच्छा खासा प्रवचन चल रहा था आपका, हाँ मेरा ध्यान आपको मिल रहा था, अब लो नहीं मिलेगा मेरा ध्यान, रहो अपने अकेले बोलते रहो। हमने ये हमारी बचपन में एक स्टोरी सुनाई थी हमारी माँ ने एक बार, तो मुझे याद आ जाती है हर समय, सिलेक्टिव लिसनिंग। तो तीन चोर, तो पेशेवर चोर थे, हर जगह जा जा के डाका डालते और कई किसी के गहने लूट लेते तिजोरी में से, या फिर पैसे लूट लेते। एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि आज हम कुछ पैसे या गहने ये सब नहीं लूटेंगे, हम कुछ खाने की वस्तु लूटेंगे तुरंत, कि हम उसका भोग कर सकें, क्योंकि पैसे गहने वगैरह बाद में उसको बेच कर या उसका से कुछ खरीद कर फिर उसका भोग किया जा सकता। तो गए एक हलवाई की दुकान पर, वहां पर डाका डाला और खीर से भरा हुआ मटका, उनकी नजर थी पहले से, उसे चुरा ली। अब ले गए जंगल में उसको चुरा कर, जब ढक्कन खोला तो पता चला कि वो खीर थोड़ी सी थी, ज्यादा उसके अंदर खीर नहीं थी कि तीनों भर पेट उसको खा सके। तो अब दोनों तीनों ने निश्चय किया कि ऐसा करते हैं कि रात भर इस खीर को हम चंद्रमा की रोशनी में ठंडा करते हैं, वो चंद्रमा की रोशनी में खीर जब ठंडी होती है तो और स्वादिष्ट हो जाती है, और सुबह एक व्यक्ति ही इसे खाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के ही जितनी खीर है, कौन है वो, कौन होगा वो जो खाएगा, जिसे रात में सबसे अच्छा सपना आएगा वही खाए। पूरी शर्त हुई, तीनों सोए, सुबह उठे तो पहला व्यक्ति कहता है, पहला चोर कहता है कि भाई अब तुम दोनों को मैं क्या कहूं, मेरा तो ऐसा सपना था कि अब दुर्भाग्यवश तुम लोगों को ये खीर से हाथ धोना पड़ेगा। क्या था बताओ तो, मैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी वो मुझे ब्रह्मलोक की सैर करा रहे थे, हाथ पकड़कर मुझे पूरा ब्रह्मलोक दिखा रहे थे कि देखो ये ब्रह्मलोक कैसा बना है, ये यहाँ पर अप्सराएं और ये उपवन, ये बाग बगीचे सब कुछ, पर्सनल टूर दे रहे थे ब्रह्मा जी खुद, और ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा लोक है, इससे अच्छा सपना क्या हो सकता। तो दूसरा चोर कहता है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम, तुम्हें नहीं पता कि मुझे शिवजी शिवलोक ले गए थे और वो पर्सनल टूर दे रहे थे, तो शिवलोक तो और भी ऊपर है, अब वो तो दिव्य आध्यात्मिक संसार हो गया शिवलोक। तो ये पूरा डिस्क्राइब करने लगा कि शिवजी, और खास तौर पर शिवजी ने मुझे उनका कैलाश धाम, महेश धाम और गणपति जी से मिलाया। आप लोग तो यहाँ पर गणपति जी की मूर्तियां यहाँ वहां स्थापित करते हो, मैं तो पर्सनली गणपति जी शिवजी बोले कि ये हमारे गणों हैं, मिलिए इनसे, ये कार्तिकीय ऐसे कर। तो अब ये इसका मुंह इतना सा हो गया पहले वाले का, तो पहले वाले का मुंह इतना सा हो गया, दूसरे वाले का सीना फूल गया कि फाइनली खीर तो मुझे ही मिलनी है, क्योंकि तीसरे वाले पर नजर थी दोनों की, तीसरा वाला थोड़ा वो कांप रहा था डर के मारे। तो ये लगा इसको तो मेरे ख्याल से कोई बहुत भयानक भूत प्रेत का सपना आया होगा शायद, कांप रहा है डर के मारे कांप रहा है। तीसरे ने कहा, आप लोग दोनों के तो ऐसे ऐसे सपने हैं ब्रह्मलोक में शिवलोक में, मैं क्या बताऊं आप, नहीं 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 बता दो, अब खीर तो मिलनी है मुझे, दूसरा वाला बोल रहा था खीर तो मिलनी है, फिर भी सुन लेते हैं तुम्हारे क्या सपना था। तो उसने कहा, अब क्या बताऊं, हनुमान जी आए थे और गदा लेकर आए थे, खाली हाथ नहीं आए थे, गदा लेकर आए थे और मेरी छाती पर बैठे, और एक हाथ में गदा, गदा ऊंची किए, मेरे छाती पर बैठकर मुझे कहे, वो खीर है ना उस मटके में, जा पी, जाके पी उस खीर। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ये कैसा सपना है, हनुमान जी, हनुमान जी आए, अच्छी बात है, गदा लेकर छाती में बैठे और एकदम क्रोध भरी आंखों से बोल रहे हैं, खीर पीता है कि नहीं पीता। तो जब ये वाक्य सुना तो दोनों, तो फिर क्या किया तूने, अब मैं क्या करता विवाह, अरे आप बताओ, आप अगर मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते, हनुमान जी आपकी छाती पर गदा लेके बैठे हैं और आपको बोल रहे हैं जाके खीर पी, ऑब्वियसली। तो दूसरा वाला भागा, उसने ढक्कन खोला, देखा पूरी खीर खत्म। तो दोनों इतना गुस्सा होकर उसको कह रहे हैं, अरे हम लोग तेरे बगल में सोए थे, कम से कम हमको तो उठा देता, पूछता, हमारी शर्त क्या थी। तो ये देखो कितना चतुर है, इसको कहते हैं सिलेक्टिव लिस्टिंग। उसने कहा, अब मैं कैसे, अभी हनुमान जी छाती पे बैठे गदा लेकर, तुम ब्रह्मलोक में हो, इतनी दूर तुम चले गए और तुम तो उससे भी ऊंचे चले गए, शिवलोक में चले गए, टाइम कहां था, हनुमान जी ने मौका ही नहीं दिया, प्रयास तो मैं बहुत कर रहा था, तो इतने दूर दूर तुम लोग जाओगे तो मैं क्या करूं। तो इसको कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। जब खीर खानी होती है तो हम हनुमान जी को भी बुला लेते हैं अपने सपने में और अपना सपना पूरा कर देते हैं कि हनुमान जी ने मुझे ये खीर खिलवाई, हनुमान जी ने मुझे ये सब कुछ करवाया, हनुमान जी बोले कि बुधवार के कार्यक्रम में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बैठ के सास बहू का टीवी सीरियल देखते, कोई भी चीज को हम लोग प्रूव कर सकते। तो ये जो शब्द, शब्द के विषय में बताया गया है कि ये भौतिक सृष्टि की जो रचना हुई है वो उसकी शुरुआत शब्द से हुई है, जैसे इवन जो दूसरे धर्म के हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी, उनके अनुसार भी वो कहते हैं गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट, गॉड सेड लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वॉज क्रिएशन, वर्ड ऑफ गॉड। तो यहां पर यदि हम हमारे स्तर पर जानने की कोशिश करें तो हमारे स्तर पर इसको कैसे जानेंगे कि कोई छोटी से छोटी चीज भी आपको यहां निर्मित दिख रही है, बनी हुई दिख रही है, तो उसके पीछे किसी व्यक्ति ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया होगा। जैसे मान लो कि किसी को अपने प्लॉट पर घर बनाना है, घर का निर्माण करना है, तो क्या करता है, आर्किटेक्ट को बुलाता है, सिविल इंजीनियर को बुलाता है और फिर बताता है ये मेरा इतना प्लॉट है, मुझे यहां पर एक रो हाउस बनवा। हुआ क्या है, शब्दों का आदान प्रदान, फिर वो प्लॉट के अनुसार उसका फिर वो डिजाइन निकालता है और कौन सा कमरा कहाँ होगा ये सब कुछ निकालता है, सब पेपर के ऊपर, और डिस्कशन चल रहा है फिर कैसा होना चाहिए। तो डिस्कशन हो रहा है तो उस डिस्कशन में मकान का निर्माण हो गया, किसमें हो गया, डिस्कशन। अब उसे एक्शन में लाना। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं कि शब्द में शक्ति कितनी है, परंतु वही जब शब्द ब्रह्म हो जाते हैं, इस श्लोक में भगवान ने जो ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल इतनी दफा किया है, तो वही जब शब्द ब्रह्म हो जाते हैं तो जो प्रकृति सृष्टि की रचना हुई है जिसमें हम बंधे हुए हैं भौतिक शब्दों के वजह से, तो आध्यात्मिक शब्द जो हैं वो हमें इस भौतिक भव बंधन से मुक्त कर सकते। तो हमें हमारे ट्रेनिंग में ये एक टर्म जिसको कहते हैं परफॉर्मेटिव अटरेंस, ये टर्म सिखाया गया था हमारे ट्रेनिंग में कि एक है अटरेंस अर्थात उच्चारण करना, परफॉर्मेटिव अटरेंस का अर्थ क्या होता है कि वो उच्चारण जिसके पीछे, जिन शब्दों के पीछे एक्शन छिपा हुआ है। तो उदाहरण क्या दिया कि जज जब वो सेंटेंस प्रोनाउंस करता है कि इसको फांसी की सजा हो या उम्र कैद की सजा हो, किसी गुनहगार के लिए वो जजमेंट पास करता है, तो अब देखो हमने कितनी दफा ये कोर्ट सीन देखा होगा या हम जानते होंगे कि उसमें पूरा जो माहौल क्रिएट किया जाता है, एक तो अब एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जज के मुख से केवल एक लाइन निकली है, शब्द कुछ शब्द से जो वाक्य बना है वो निकला है जज के मुख से, क्या वाक्य निकला है, हैंग हिम टू डेथ, ये लाइन निकली। लेकिन उसके बाद होता क्या है, तुरंत जो गार्ड्स हैं पुलिस हैं वो उसको पकड़ के लेकर जाते हैं और फिर फाइनली उसको फांसी की सजा होती। तो अब कोई कहे अच्छा बस बोलने से हो जाता है, तो रास्ते चलता या फिर किसी बिल्डिंग का चौकीदार, उसे अगर कोई उस बिल्डिंग का व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा तो वो भी ऐसा हथौड़ा लिए और उसके डेस्क के ऊपर मार के बोलता है हैंग हिम टू डेथ, कुछ होगा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके अंदर वो अथॉरिटी नहीं है। वो जज भी उस कोर्ट के अंदर जब वो शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो पावर है। ऐसे ही जज रास्ते चलते चलते उसको कोई पसंद नहीं आया, कोई गाड़ी उसकी ठोक दी, उसको हैंग हिम टू डेथ नहीं होगा वो। तो इसलिए यहां पर कृष्ण कथा का पावर या शब्दों का पावर, शब्द ब्रह्म का जो पावर है, उस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जब भगवान जो कि परब्रह्म है उनके मुख से जब कोई शब्द निकलते हैं तो उसको क्या कहा गया है, भगवत प्रणीतम, कि वो वेद वाक्य बन जाता है। और फिर जब शुद्ध उनके प्रतिनिधि उन्हें सही माहौल में, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को उस गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई तो उसका जो पावर था, आज दिन तक हमारे भौतिक बंधन से हमको मुक्ति दिलाने के लिए वो शब्द एटर्नली श्रीमद् भागवत में रिकॉर्डेड है। तो इसलिए अब कृष्ण कथा श्रवण के चार स्तर, कि जब हम, ठीक है, भगवान के मुख से निकले हुए शब्द और भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि जो हैं उनको वो रिपीट कर रहे हैं, और इस मंदिर में जैसे कि इसका माहौल क्रिएट किया गया है, उस कृष्ण कथा को सही माहौल में सही समय सही तरीके से वो पहुंचे हमारे भवबंधन को मुक्त करने के लिए। लेकिन उसमें भी जो एक स्तर हमारे आचार्य कहते हैं कि श्रवण होता है आकस्मिक श्रवण, जिसमें जो प्रवक्ता है वो पूर्ण ज्ञान में कृष्ण कथा सुना रहे हैं, लेकिन जो श्रोता है उनको उसका महत्व नहीं पता। तो आकस्मिक श्रवण का अर्थ क्या है, एक्सीडेंटल हियरिंग। एक्सीडेंटल हियरिंग मतलब जैसे मान लो कि कोई उस रास्ते से, जो यहां पर अपनी नदी है नंदिनी नदी, उस रास्ते से कोई व्यक्ति चलते हुए जा रहा था, तो उसने स्पीकर पर सुना, स्पीकर पर सुना कि तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान यहां मिलेगा। उसने क्या सुना, तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान यहां मिलेगा। हो सकता है उसके जीवन में कुछ बहुत समस्याएं हो रही होंगी, बस ये लाइन सुनकर आ गया, या फिर उसने देखा बहुत भीड़ यहां पर जमा है, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तो बस आ गया। इसको कहते हैं आकस्मिक। एक दफा ये अनुभव मेरे साथ हुआ, बहुत साल पहले, मुझे याद है 1994 की बात है, हम लोग दिसंबर के महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो बंबई में मरीन लाइंस, ये जगह आपने सुनी होगी, तो वहां पर एक मरीन लाइंस ब्रिज है, तो ब्रिज के नीचे वहां पर बहुत, जब ऑफिस छूटती है तो लोग, उनका आवागमन चलता है, उस ब्रिज से नीचे उतरते हैं ऊपर चढ़ते हैं बहुत। तो हम लोग, मैं और हमारे राधेश्याम प्रभु, तो हम दोनों थे वो बुक टेबल पर। आप जानते हैं राधेश्याम प्रभु वो साउथ इंडियन है, तो हुआ क्या कि हम लोग दिन भर वहां पर बुक टेबल लगाए हुए थे, रात के 8-8:30 बजे अब वाइंड अप कर वापस मंदिर जाना था, तो एक कपल वहां पर वो आए और वो राधेश्याम प्रभु को पूछने लगे कि आप जिस संस्था से हैं, आपकी संस्था में कुछ मंत्र है जाप करने के लिए। ऑब्वियसली मंत्र नहीं, महामंत्र है जाप करने, तो हरे कृष्ण महामंत्र उनको बताया तो बोले कि नहीं, ये हरे कृष्ण महामंत्र वो आप गुजराती में बताइए मुझे, गुजराती में। तो राधेश्याम प्रभु अभी बोले महामंत्र गुजराती में कैसे होता है, महामंत्र तो महामंत्र है, उसका ऐसा थोड़ी कि गुजराती मराठी महामंत्र महामंत्र। बोले नहीं लिख के दीजिए, गुजराती में लिख के दीजिए। बोले नहीं हमको गुजराती नहीं आती। तो मेरे पास आया, बोला आपको आती गुजराती? बोला नहीं मुझे भी नहीं आती गुजराती। तो मैंने कहा आपको मैं हिंदी में लिख के देता हूँ। नहीं 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 हिंदी समझ में नहीं आ रही, गुजराती। बोला आप बात कर रहे हिंदी में? अब उसकी बीवी खींच रही है, गुजराती में बोल रही है कि ना क्या फालतू लोगों के साथ तुम मुंह लग रहे हो यहाँ पे, ऐसे कर समझ में उतनी गुजराती समझ में आ गए। तो हम दोनों तो फालतू हो गए अभी। हाँ तो अब वो वहां पे अड़ा हुआ कि नहीं मुझे यहां पर से गुजराती में ये हरे कृष्ण महामंत्र लिखवा कर ले जाना। तो मैंने कहा ठीक है, देखिए ऐसा है ना, तो इनको गुजराती आती है, साउथ इंडियन है, ना मुझे गुजराती आती है। मैं सिंपल है ये महामंत्र, याद हो जाएगा आपको, मेरे पीछे आप दोहराइए। तो मैंने उसको एक बार दो बार तीन बार, हर समय राम को यहां कर देता था, हरे को यहां कर देता था, कृष्ण को यहां उल्टा पुल्टा बोलता। मैं ये क्या अजीब समस्या है, ये एक महामंत्र इसको याद नहीं हो रहा है, इतना सिंपल। तो हमारा ये वार्तालाप चल रहा है, उसकी बीवी पीछे से खींच रही है, वो जाने को तैयार नहीं है, यहां पर हमको वाइंड अप करके जाना है वापस मंदिर, भूख लग रही है, दिन भर से वहां पे खड़े हैं, लेकिन इसको महामंत्र चाहिए, महामंत्र तो देना ही चाहिए, जरूरी है और क्या। तो हुआ क्या कि एक व्यक्ति वो बगल से गुजर रहा था, वो रुका और वो मुझे आके पूछता है आपको कुछ गुजराती में लिखना है क्या? मैंने कहा आप गुजराती है? हाँ। तो आप ये लिखिए महामंत्र। तो उसने गुजराती में वो महामंत्र लिख के उस व्यक्ति को दिया, वो व्यक्ति शांत हुआ, फाइनली उसको गुजराती में महामंत्र मिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मीठी दाल होती ना गुजराती की, वैसे वो उसको लेके फाइनली बीवी भी शांत हुई, वो भी शांत हुआ, वो निकल गया। ठीक है, ये व्यक्ति जिसने वो गुजराती में लिख के दिया वो रुक गया, बोले क्या है ये महामंत्र, क्या है जो आपने लिखवाया है, ये क्या है, आप लोग कौन है और यहां पर क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा चलो अभी उसने तो महामंत्र वो लेकर चला गया, अब इसको फिलॉसफी बताते हैं। तो उसको बैठाया, उसको बताया सब कुछ, उसको मंदिर का एड्रेस दिया। मैंने देखा उसके पश्चात, क्योंकि उस समय तो मैं ज्वाइन नहीं किया था, उसके चार साल बाद मैं ज्वाइन किया था, तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति रेगुलरली मंदिर आना शुरू किया। और फिर वो हमारे वहां पर एक काउंसलर अक्रूर प्रभु, उनका काउंसिली बना। और फिर मैं जब ज्वाइन किया उसके बाद चार पांच साल बाद मुझे वो दिखा, दीक्षित भक्त हो गया वो। और फिर मुझे कहता है प्रभु जी याद है गुजराती महामंत्र, गुजराती महामंत्र। हाँ कुछ तो इंसिडेंट हुआ था, लेकिन अब ये तिलक विलक लगा के थोड़ा भक्त अलग दिखने लगते ना सब, तो उसने याद दिलाया। तो मुझे अभी वो याद आया कि क्या था, आकस्मिक श्रवण था। इसके पश्चात तो ऐसे बहुत बार होता है कि हमारे ऐसे बुधवार के कार्यक्रम में भी कोई आकस्मिक आके बैठ जाता है, क्या करते हैं ये लोग बैठ के यहाँ पे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा, एक व्यक्ति खड़ा होके घूमते फिरते पता नहीं क्या बोलता रहता है, बाकी लोग बैठे रहते हैं, कई बार वो दरवाजे से बाहर देखते रहते हैं काउंटर चालू हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि क्या आप लोग मेरी तरफ देख रहे हैं ना, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मुझे पता चलता है कि नजर कहाँ है, कई श्रोताओं की नजर कहाँ है। तो जो नया आता है फिर वो भी बाहर देखता है कि ये बाहर क्यों देख रहा है। फिर एक दो बार वो बुधवार के कार्यक्रम में आ जाता तो उसको पता चलता है कि बाहर क्यों देखते हैं लोग, 9 बजे के बाद ये लोग बाहर क्यों देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कारण है उसका। फिर कई कुतूहल, कौतूहल उनके अंदर कौतूहल रहता है कि क्या ये लोग किस प्रकार के लोग हैं, चलो उनके अंदर जिज्ञासा होती है। तो इसको बोलते हैं द क्यूरियस काइंड ऑफ हियरर। अच्छा, ये हैं जो श्रवण करने आते हैं, जो कि फल की इच्छा से कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे, कि कुछ पुण्याई मैं कमाऊंगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे कुछ काम नहीं कर रहा है, कम से कम आके ये इनके भगवत कथा में आके बैठ जाएंगे तो शायद जो लोन पास नहीं हो रहा है बैंक से वो पास हो जाएगा, और मकान मालिक जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ शांत हो जाएगा, घर में जो इतना उपद्रव चल रहा है बच्चों का, बीवी का, पति का, वो सब कुछ हो जाएगा सुनने से। तो फलों इच्छित, एक व्यक्ति वो उसने देखा एक रेस्टोरेंट के आगे बहुत इंटरेस्टिंग साइन लगा हुआ था, रेस्टोरेंट के आगे साइन लगा हुआ था आइए जितना मर्जी खाइए बिल आपका पोता भरेगा। बोला मतलब उसके तो छोटे छोटे बच्चे थे, बोले तो मेरे तो कोई पोता अभी तक हुआ नहीं है, तो पूरे परिवार को ले गया, पूरा अच्छा पेट भर के खुद भी खाया, अपने बच्चों को भी खिलाया, बीवी को भी खिलाया, और पूरा खाने के बाद में वो वेटर बिल लेकर आया 10,000 का। तो उसने कहा लेकिन वो साइन आपने लगाया है वो, और मैंने तो 10,000 का खाया भी नहीं, मैं देख रहा था आपके मेनू कार्ड में कि कौन सा आइटम कितने का है, वो मैंने अपना उसको ऐड किया 5,000, 10,000 का बिल क्यों ला रहे तुम, और तुमने क्या लिखा तो पोता भरेगा। बोले तुम्हारे दादाजी का है ये, तुम्हारे दादाजी का बिल है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम किसी इच्छा से, किसी फल की इच्छा से श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन फिर श्रवण करने के पश्चात पता चलता है कि अरे बाप रे, मेरे दादाजी ने क्या कुछ नहीं कर रखा था, हमारे मेरे खानदान में क्या कुछ गड़बड़ हुई हुई थी। फिर उन सबको सुलझाने के लिए फिर हम शुद्ध कृष्ण भक्ति में लगते हैं, और फाइनली इसे कहते हैं उद्देश्य पूर्ण श्रवण। तो उद्देश्य पूर्ण श्रवण जो है वो क्या है, जैसे कि परीक्षित महाराज का उद्देश्य क्या था कि मुझे अब मेरी मृत्यु को कैसे संवारना है, इसे कहते हैं उद्देश्य पूर्ण श्रवण। कि जब हम इस चेतना में आकर श्रवण करते हैं कि मुझे मेरे मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, लक्ष्य है, उसे पूरा करना है, मुझे इस भौतिक संसार से मुक्त होकर आध्यात्मिक संसार, परम गंतव्य स्थान ब्रह्म गंतव्य, वहां पर उसे प्राप्त करना है, तो जब उस उद्देश्य से हम श्रवण करते हैं तो भगवान यहां पर कह रहे हैं उसे ब्रह्म हवि। वो सही मायने में वो श्रवण की जो विधि है, वो कृष्ण कथा कीर्तन और श्रवण की जो विधि है, उसे हवन कहा गया, उसे यज्ञ कहा गया है। और इस कलयुग में बाकी हम कुछ भी प्रयास कर लें, हाँ वो सारे यज्ञ जो बताए गए हैं होम अनुष्ठान इत्यादि शास्त्रों में, वो कुछ हम उसके काबिल भी नहीं हैं, और उसका फल इतना नहीं प्राप्त होगा जितना कि ये हवन करने से होगा, ये श्रवण करने से होगा। और इसे कितना आसान बना दिया युगावतार ने और उनके प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद, इन्होंने इतना आसान बना दिया कि आपको इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग बुधवार के कार्यक्रम में आते हैं, आप लोगों को यहां पर कुछ होमवर्क कर आना पड़ता है, कुछ तैयारी कर आनी पड़ती है, मतलब श्रवण करने के लिए नहीं, आकर आपको केवल बैठना है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो हमने अलग अलग श्रेणियां जिसकी चर्चा की है, हमें आकर देखना है कि मैं कौन से श्रेणी में उसका श्रोता बन रहा हूं। और जब फाइनली ठीक है, किसी भी तरीके से हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही, परंतु उद्देश्य पूर्ण जब श्रवण किया जाए तब जाकर वो उद्देश्य पूर्ण श्रवण जो है हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूरा करेगा। हालांकि और भी बहुत से स्लाइड्स थे, परंतु आज श्रीमती ललिता देवी, इनका आविर्भाव दिवस है, और आज ही के दिन हमारे मंदिर में ललिता विशाखा देवी, इनका इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2013 में, यदि आप लोगों को याद है तो 2013 में इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो आज हम उनके इस ललिता देवी या ललिता षष्ठी जिसको कहते हैं, श्रीमती राधा रानी से दो दिन पहले जिनका आविर्भाव हुआ, तो वो श्रीमती राधा रानी से थोड़ी बड़ी है। विशाखा देवी, उनका आविर्भाव हुआ राधाष्टमी के ही दिन, तो विशाखा और राधा रानी वो हम उम्र है, परंतु ललिता देवी वो राधा रानी और विशाखा इनसे बड़ी हैं, तो सबसे बड़ी गोपी हैं। तो हम आज उनकी प्रसन्नता के लिए उनका गुणगान करते हुए आज हम ललिता अष्टकम गाने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी आज का हमारा प्रवचन समाप्त कर रहा हूँ, ताकि हम इत्मीनान से बिना टेंशन के श्रीमती ललिता देवी उनकी प्रसन्नता के लिए ये ललिता अष्टकम गाए। तो ये पूरा जो ललिता अष्टकम है ये संस्कृत में है, तो आप घबराइए मत, इसको हम पहले भी गा चुके हैं और